संख्या 52। संविधान के पूर्णता की पैरवी। 8 जून 1949 को संविधान सभा में संचित निधि बनाए जाने के संबंध में विधेयक प्रस्तुत करते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, बिना कानून बनाए किसी तरह का कर लागू नहीं किया जा सकता। कार्यपालिका जनता पर बिना संसद की स्वीकृति के कोई टैक्स नहीं लगा सकती। केंद्र सरकार में लोक लेखा का ही नाम संचित निधि है। इस मद में कर की उगाही से प्राप्त धनराशि आती है तथा सभी प्राप्ति और खर्च इसी मद से होते हैं। संचित निधि पुराने शब्द लोक लेखा के ही नाम से है। संचित निधि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सन 1977 में ब्रिटेन में हुआ। इंग्लैंड में संसद संचित निधि राजा के विवेकाधीन कर देती थी, फिर राजा उसका संचयन और व्यय सुनिश्चित करते थे, जैसे उनके विवेक में उचित होता था। प्रायः राजा धन को उन मदों में व्यय कर देते थे जिनके बारे में संसद की राय भिन्न होती थी। संसद का निधि बना देने के बाद उस पर कोई नियंत्रण नहीं रहता था। बाद में संसद ने धन अर्जन और उसे किन मदों में खर्च कर दिया जाए इसकी रूपरेखा भी बनानी शुरू की। सामान्य रूप से राजा के नियंत्रण को कम किया। बाद में बजट के रूप में संसद ने धन संचयन, रख रखाव तथा व्यय की मदों को निर्धारित करना शुरू किया। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, आयरलैंड, लगभग सभी संविधानों में संचित निधि की व्यवस्था है। हम उससे अलग नहीं हट रहे हैं। संसद के समक्ष वित्तीय विवरण प्रस्तुत होता है, फिर संसद मदों के अनुसार कट मोशन के रूप में प्रस्तावों द्वारा इसे पास करती है। अब नई व्यवस्था में पहले राष्ट्रपति का अनुमोदन काफी था, लेकिन अब उपयुक्त एप्रोप्रिएशन ब्रैकेट में विनियोग ब्रैकेट क्लोज विधेयक पास किया जाता है। संसद ही संचित निधि के मामले में सर्वोच्च है। किसी भी मद में कोई भी राशि बिना संसद की अनुमति के खर्च नहीं हो सकती। इसीलिए राष्ट्रपति के अनुमोदन से खर्च की क्या आवश्यकता? इस खर्च को संसद विधेयक पास करे। 1935 के एक्ट में गवर्नर जनरल अपने कार्यों को सुगमतापूर्वक संचालित करने के लिए अपने विवेकाधीन कोष से पैसा खर्च करते थे। वह संसद में बहस के लिए नहीं आता था। वह राशि को अपनी आवश्यकता अनुसार बढ़ा घटा सकते थे। उन्हें अपने विशेष कृत्यों के लिए अपना बजट बनाने का पूरा अधिकार था। कुछ निश्चित सेवाओं के लिए कुछ खर्च वे स्वयं कर सकते थे। 1935 का कानून जब बन रहा था, तो ब्रिटेन की सरकार संचित निधि पर संसद की मुहर लगाने के सिद्धांत को स्वीकार करने वाली थी, लेकिन भारत की सरकार ने मानने से इनकार किया। इसका कहना था कि गवर्नर जनरल के अपने भी कृत्य हैं जिन पर पैसा खर्च करने का उनका अधिकार है, उन्हें संसद में जाने की जरूरत नहीं है। अब हम कार्यपालिका को यह अधिकार देने को तैयार नहीं हैं कि वह राशि निर्धारित करे और उसे खर्च कर दे। दुनिया के सभी लोकतांत्रिक संविधानों में धन व्यय करने के मामले में संसद ही सर्वोच्च है। बजट पर 2 महीने चर्चा में लग जाएंगे। वित्तीय वर्ष समाप्त होने से पूर्व संसद बहस पूरी नहीं कर सकती है, इसीलिए कार्यपालिका को संसद की मंजूरी से 1-2 माह का खर्च वोट ऑन अकाउंट के जरिए कुछ पैसे दिए जा सकते हैं और इस बीच बजट पर मदवार चर्चा होकर पास किया जा सकता है। पृष्ठ संख्या 53। भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद दोनों देशों में शरणार्थियों का आना जाना आम बात थी। किस तरह के लोगों को भारतीय नागरिकता दी जाए, यह एक अहम प्रश्न था। डॉक्टर अंबेडकर ने इस प्रश्न पर 12 अगस्त 1949 को अपने भाषण में कहा, 19 जुलाई 1949 से पहले जो कोई भी व्यक्ति पाकिस्तान से आकर आसाम में बस गया, वह भारत का नागरिक स्वतः मान लिया गया। लेकिन जो भी व्यक्ति 19 जुलाई के बाद आया है, वह अपने आप भारत की नागरिकता का पात्र नहीं है। उन्हें अपनी नागरिकता के लिए आवेदन करना होगा। वह सिद्ध करे कि आसाम में 6 महीने से रह रहा है और उसे सरकार द्वारा नियुक्त एक अधिकारी के यहाँ पंजीकरण कराना होगा। केवल 6 महीने से रहना और आवेदन कर देने मात्र से पंजीकरण नहीं हो जाएगा। यह अधिकारी का विवेक है कि वह किसी व्यक्ति को पंजीकृत करे या न करे। वह अपने समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों की समीक्षा करने के बाद जब संतुष्ट हो जाए कि उक्त व्यक्ति भारत में स्थायी रूप से बसने के लिए आया, तभी उसका नाम पंजीकृत करेगा। इसीलिए कुछ सदस्यों को यह आशंका है कि फ्लड गेट खोल दिया गया है, उस पार से बंगाली या मुसलमान भारी संख्या में आसाम में प्रवेश कर वहाँ के मूल स्वरूप को नष्ट कर देंगे। यह आशंका निर्मूल है। मार्च 1947 को जो लोग भारत छोड़ पाकिस्तान की सरहद में चले गए, वे स्वतः भारत के नागरिक नहीं हैं। अंतरराष्ट्रीय कानून के मुताबिक जन्म स्थान ही निवास आंकने का मानदंड है। कोई भी व्यक्ति आवेदन करके अपना जन्म स्थान नहीं बदल सकता। जन्म के साथ ही जन्म स्थान जुड़ा हुआ है। वे व्यक्ति जो भारत में पैदा हुए लेकिन पाकिस्तान चले गए, वे अंतरराष्ट्रीय कानूनों के आधार पर दावा कर सकते हैं कि उनका जन्म स्थान नहीं है। हम लोगों ने 1 मार्च 1947 को सीमा रेखा इसीलिए मानी है कि उस समय तक दंगे प्रारंभ हो गए थे और लोगों का भागना शुरू हो गया था। इसीलिए अंतरराष्ट्रीय कानूनों के मुताबिक कोई व्यक्ति यदि 1 मार्च 1947 को अव्यवस्था के कारण भारतीय इलाका छोड़कर पाकिस्तानी क्षेत्र में स्थायी रूप से बसने के लिए चला गया, तो वह भारतीय नागरिकता का हकदार नहीं है। जन्म स्थान तो नागरिकता की प्रथम कसौटी है, किंतु यदि वह 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान क्षेत्र में स्थायी रूप से बसने के लिए चला गया, तो उसका जन्म स्थान बदल गया और इस तरह उसकी नागरिकता तथा जन्म स्थान का दावा समाप्त हो गया। कुछ लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान की सीमा में चले गए किंतु पुनः वापस भारत की सीमा में चले आए। ऐसे लोगों को भी भारत की नागरिकता स्वतः नहीं मिल जाएगी। उन्हें कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी। पाकिस्तान सरकार ने कुछ लोगों को भारत पुनः वापस आने के लिए अस्थायी रूप में या व्यापारी रूप में नहीं, अपितु भारतीय रूप में स्थायी रूप से बसने की मंशा से आने की छूट दी है। तो ऐसे लोगों के बारे में विचार करने की जरूरत है। ऐसे लगभग 2 से 3 हजार हिंदू मुसलमान दोनों होंगे जिन्हें भारत ने स्वतः पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आकर स्थायी रूप से बसने की इजाज़त दी है। तो ऐसे लोगों को नागरिकता के अधिकार से वंचित रखना उचित नहीं है। आपातकाल में मूल अधिकारों को निलंबित किए जाने के प्रश्न पर 20 अगस्त 1949 को बोलते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, ग्रेट ब्रिटेन में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को कार्यपालिका निलंबित नहीं कर सकती। पृष्ठ संख्या 54। संयुक्त राज्य अमेरिका में भी विमस कॉमर्स सहित कई मूल अधिकारों को राष्ट्रपति निलंबित नहीं कर सकते। संवैधानिक गारंटी को निलंबित करने के लिए कांग्रेस के पास जाना पड़ता है। हृदयनाथ कुंजरू की टोका टोकी का जवाब देते हुए अंबेडकर ने कहा कि अमेरिकी संवैधानिक व्यवस्था पर लगभग 100 पुस्तकें हैं। मैंने भी लगभग 50 पढ़ी है। अंतरिम काल में राष्ट्रपति भी अमेरिका में मूल अधिकारों को निलंबित कर सकता है। यहाँ भी हम राष्ट्रपति को अंतरिम अधिकार दे रहे हैं। अंततः इसका भी अनुमोदन संसद ही कर सकेगी। हमारे राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही निलंबित करेंगे, जो परिषद संसद के प्रति उत्तरदायी है। आपातकाल में किसी भी मूल अधिकार का निलंबन आपातकाल समाप्त होने के तत्काल बाद स्वतः समाप्त हो जाएगा। आपातकाल की घोषणा का शीघ्रातिशीघ्र अनुमोदन संसद द्वारा कराना जरूरी है। शीघ्रातिशीघ्र अनुमोदन कराने का भाषण करते हुए उन्होंने कहा, यह 1 महीने, 2 महीने के अथवा 15 दिनों के भीतर करा लेना चाहिए। 14 अक्टूबर 1949 को संविधान सभा में गृह मंत्री सरदार पटेल ने कहा, कांग्रेस पार्टी के लोग पंजाब बांटने के पक्ष में नहीं थे। यह तो सिखों ने ही स्वीकार कर लिया कि पंजाब का बंटवारा कर दिया जाए। पंजाब में बंटवारे के खिलाफ एक भी आवाज़ नहीं उठी। यदि सिख बंटवारे के खिलाफ रहे होते तो हम लोग बंटवारा कबूल करने वाले कौन होते हैं? मुझे संविधान सभा ने माइनॉरिटी कमेटी का अध्यक्ष बनाया। एक देशभक्त ईसाई नेता ने खुद ही कहा कि धार्मिक आधार पर हम आरक्षण नहीं मांगते। वे प्रस्ताव लाए कि वे आरक्षण खत्म कराना चाहते हैं। वे मतदाता की मुख्य धारा में शामिल होना चाहते हैं। पृथक मताधिकार के क्या मायने हैं? सिखों ने भी कहा, यदि सभी अल्पसंख्यक तैयार हैं तो हम भी तैयार हैं। हम विशेष सुविधा नहीं चाहते हैं। अब हम अपने पैरों पर खड़े हैं। मुझसे सिखों के ही प्रतिनिधि मिले और कहा कि सिखों में जो अनुसूचित जाति के हैं उनका आरक्षण खत्म न किया जाए। अनुसूचित जाति के लोगों ने सिखों को आरक्षण देने से रोका, किंतु हमसे सिख नेताओं ने कहा, यदि इन्हें आरक्षण नहीं दिया गया तो वे हमारा धर्म छोड़कर वापस चले जाएंगे और हम कमजोर हो जाएंगे। यह हम लोगों के लिए संकटपूर्ण घड़ी थी कि धार्मिक सिखों में भी हम अनुसूचित जाति को स्वीकार करें, क्योंकि वहां जाति नहीं है। सिखों में पहले कभी अनुसूचित जाति की मान्यता नहीं थी, किंतु सिख कांग्रेस पर बरसने लगे तो हमने सलाहकार समिति के लोगों को किसी तरह तैयार किया कि वे मान लें इस शर्त पर कि सिख लोग फिर कोई आरक्षण के संबंध में दूसरा प्रश्न नहीं खड़ा करेंगे। सलाहकार समिति में सरदार उज्ज्वल सिंह ने प्रश्न किया, सेवाओं में सिखों का क्या होगा? हमने कहा, आपके नेताओं ने हमें लिख कर दिया है कि वे इस प्रश्न को यहाँ नहीं उठाएंगे। ज्ञानी करतार सिंह ने उनको रोकते हुए कहा, इस प्रश्न को हम अपने प्रांत में हल करेंगे, इसे यहाँ नहीं उठाएंगे। 10 मई 1949 को पूर्वी पंजाब के विधानसभा के सिख मेंबरों की बैठक हुई। इसमें संविधान सभा के सिख सदस्यों ने भाग लिया। सरदार कपूर सिंह स्पीकर पूर्वी पंजाब विधानसभा ने अध्यक्षता की। बैठक में मजहबी कबीरपंथी रामदासी बैरियाज सिकलीगार आदि जातियों को अनुसूचित जाति की सुविधा देने की मांगे की गई। माइनॉरिटी सलाहकार सभा में डॉक्टर अंबेडकर भी थे। उन्होंने सरदार पटेल के आग्रह को स्वीकार कर लिया और सिखों के कमजोर वर्ग को भी वही सुविधाएं प्राप्त हुई जो दिगर हिस्सों में अनुसूचित जातियों को प्राप्त हैं। पृष्ठ संख्या 55। छह दिसंबर 1949 को आसाम के आदिवासी क्षेत्र के प्रावधानों पर बोलते हुए उन्होंने कहा, आसाम के बाहरी क्षेत्र के आदिवासी मोटे तौर पर हिंदुत्व की धारा से घुल मिल गए हैं। उन्होंने हिंदू संस्कृति सभ्यता स्वीकार कर लिया है, जिनके इर्द गिर्द वे रहते हैं, उनसे घुल मिल गए हैं, किंतु आसाम के आदिवासियों का ऐसा मामला नहीं है। उनकी जड़ें अभी भी उनकी सभ्यता में हैं और वे अपनी ही संस्कृति को मान रहे हैं। उन्होंने अभी तक हिंदुओं से घिरे होने के बावजूद उनके सभ्यता संस्कार को स्वीकार नहीं किया है। उनके उत्तराधिकार के कानून, शादी विवाह के नियम, संस्कार सभी हिंदुओं से भिन्न हैं। इसीलिए हम लोगों ने देश के दूसरे हिस्सों के मुकाबले आसाम के लिए अलग पद्धति स्वीकार की है। उनकी स्थिति अमेरिका के रेड इंडियंस जैसी है। अमेरिका ने रेड इंडियंस के लिए आरक्षित स्थान अथवा बाउंड्री खींच दी है। वे वस्तुतः स्वतंत्र लोग हैं। अमेरिकी सरकार ने भी सोचा कि उनको एक ही झटके में मुख्य धारा में नहीं लाया जा सकता। आसाम सरकार के कार्यकारी आदेश इन आदिवासी क्षेत्रों पर ब्रैकेट में स्वायत्त जिलों ब्रैकेट क्लोज लागू होंगे। इन क्षेत्रों पर 1935 के एक्ट में भी आसाम राज्य की कार्यकारी शक्तियां नहीं अपितु गवर्नर का आदेश लागू होता था, किंतु हमने उस पद्धति को समाप्त किया है। पूरे आसाम में स्वायत्त परिषद वाले इलाकों सहित आसाम राज्य के कार्यकारी आदेश ही लागू होंगे। वे भारतीय संसद अथवा उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय की परिधि से बाहर नहीं होंगे। भारतीय संसद और आसाम विधानमंडल द्वारा पारित सभी कानून इन क्षेत्रों ब्रैकेट में स्वायत्त जिले और परिषदों ब्रैकेट क्लोज पर लागू होंगे। यदि उस राज्य के राज्यपाल ऐसी घोषणा न कर दे कि अमुक कानून राज्य के इन क्षेत्रों में लागू नहीं होगा, यह आसाम के राज्यपाल के ऊपर निर्भर करेगा कि संसद अथवा विधानमंडल द्वारा पारित कानूनों को इन क्षेत्रों में भी लागू करें। इन स्वायत्त कौंसिलों अथवा जिलों का भी प्रतिनिधित्व संसद और विधानमंडल में रहेगा, जिससे वे लोग भी कानूनों को पास करते समय अपनी राय व्यक्त कर सकें। हम लोगों ने इस प्रावधान को करते समय आसाम की जनता को दो हिस्सों में नहीं बांटा है। स्वायत्त जिलों और परिषदों को कुछ खास मामलों में स्वायत्तता दी गई है, लेकिन साथ ही साथ उन्हें पूरे देश व प्रांत की मुख्य धारा में बांधने की भी कोशिश की गई है। यदि इस कोशिश के बावजूद वहाँ के आदिवासी देश और आसाम की मुख्य धारा से नहीं जुड़ते, तो देश का दुर्भाग्य है। कुछ सदस्यों ने आशंका प्रकट की है कि यदि इन क्षेत्रों को स्वायत्तता दी गई, तो वे तिब्बत की राह पर जा सकते हैं। यह आशंका निर्मूल है। 17 अक्टूबर 1949 को संविधान सभा में श्रीमती पूर्णिमा बनर्जी ने एक संशोधन उपस्थित कर दिया कि हमारे देश की सार्वभौमिकता अंततः जनता में निहित है। इसके समर्थन में महावीर त्यागी आचार्य कृपलानी ने भी भाषण किए। कृपलानी ने कहा, सार्वभौमिकता जनता में है और जनता से ही ग्रहण की जाएगी। इसका जवाब देते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, हमने संविधान का उद्देश्य पास करते समय कहा था कि हमारा इस संशोधन की मूल भावना से विरोध नहीं है। हमारे मसविदा की शब्दावली भी यही कह रही है। हम लोग जनता की ही ओर से इस संविधान को बना रहे हैं।